ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। पिछली कुछ कड़ियों को अगर हम देखें तो इस श्रृंखला में हम विचलित हो रहे थे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमें परेशान कर रहा है, क्या समय यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात सामने आई कि समय एक चक्र है, काल चक्र को हमने समझने की कोशिश की और ये भी जाना कि जो गुजर गया वो फिर लौटता है। चार युग कहे जाते रहे हैं और किस तरह ये चार युग काम करते हैं इनके बारे में जाना, कुछ और जानते हैं कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा और ये चार युग किस तरह से काम करते आए हैं। बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। हमने जो बात छोड़ी थी वो ये था कि चौथे युग में हम हैं और ये कब से सुन रहे थे कि कलह युग है या कल युग है और सतयुग से ये परंपरा, ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर हम कालचक्र के इस पूरे एस्पेक्ट को देखें तो किस तरह से काम करता आया है। और क्या आपने एक बात जो और क्लियर की थी वो ये कि जो सोल है जो एक बार इस ड्रामा में आ गया, उस परम धाम से हम यहाँ पहुंचे, तो फिर इन चारों युग में वो अपना सफर तय करता हुआ अलग अलग लिबास में, वो अपने या अलग अलग शरीर की बात करें या जन्मों की बात करें, गुजरता हुआ कलयुग के अंत तक रहेगा और फिर परम धाम लौट जाएंगे। ये कालचक्र का पूरा सिनेरियो जो कि सोल के साथ जुड़ता था, इससे जुड़ी कुछ और बातें आज
जो हमने देखा ना कि ये पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम है, सोल्स एंड मैटर। ये ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, ना ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट। इसीलिए जो पहले भी बात हुई कि हम परमात्मा का अंश हैं, फिर उसमें जाकर मिल जाएंगे, तो ये क्लैरिटी चाहिए कि ना हम उससे टूटे थे ना उससे जाकर मिल जाएंगे। वी आर इटर्नल, टू सेपरेट एंटिटीज विच हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। तो सोल, मैटर एंड गॉड, थ्री एंटिटीज जो हमेशा अविनाशी है। और ये एक सिस्टम है जो ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय। और दूसरा, एनर्जी goes from the higher state to a lower state whenever there is movement. The law of entropy से हम एक ordered higher state से chaotic stage में आ गए हैं। अब बाहर से एक external source of energy intervene करती है और हम फिर से वो chaotic state से ordered state में आते हैं। तो अभी अगर हम law of entropy को world के view पर देखें, आज के समाज के, तो जो हमारी values है, हमारे सारे principles हैं, ये किस स्थिति में जाकर पहुंच गए?
बिल्कुल क्योटिक है, इट्स लाइक द रियल वर्ल्ड।
थोड़ा साल पहले भी अगर जाएं तो काफी ऑर्डर्ड स्टेज पे थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि ये वैल्यूज काम नहीं करते। एंड इसीलिए लॉ ऑफ एंट्रोपी हमारे वैल्यू सिस्टम पर आज वर्क कर रहा है कि कहां एक संपूर्ण सत्यता के समय पे, और आज हम एक ऐसे समय पर आए हैं जो सत्यता दिखाई ही नहीं देती और हम सोचते हैं कि ये वर्क भी नहीं करते। इतना हमारा वैल्यू सिस्टम गिर गया और अब हम इसको वापस वो ऑर्डर्ड स्टेट में लेके जाएंगे। तो जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, सिमिलरली ऑन अ बिगर पिक्चर द वर्ल्ड ड्रामा इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू फोर स्टेजेस, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जैसे वो साइकिल रिपीट होता है, इटर्नल है, उसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ये कब शुरू हुआ, ये कब खत्म होगा। उसी तरह ये बड़ा साइकिल भी, तो जैसे सतयुग था, ट्रैवल करते करते हम कलयुग में आए, अब कलयुग के बाद
सतयुग में
फिर से पहुंचना है। और उसके लिए होना क्या है कि ये एनर्जी और मैटर को फिर से वो केओटिक स्टेज से वापस वो ऑर्डर्ड स्टेज में आना है। और उसके लिए वो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी जो परमात्मा, जो स्वयं कभी उस हाई स्टेज से लो स्टेज में नहीं आते हैं क्योंकि वो शरीर नहीं लेते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर वो पावर है, वो ऑलमाइटी है जो हमें वापस उस ऑर्डर्ड स्टेट में ला सकते हैं। दैट इज आवर जर्नी, दैट इज आवर स्टोरी, एंड दैट इज द वे वी हैव ट्रेवल्ड। और एक जो हमने देखा कि एक बार जब हम स्टेज पर आते हैं देन वी आर ऑन द स्टेज
टिल द कलयुग,
टिल नाउ the drama is going to change again and we are going to go back to the next, because obviously
this is one cycle. Satyug se leke kalyug tak ka ek cycle,
ek cycle hai.
Dobara wo cycle shuru hone se pehle aapne kaha ki hum lautenge,
right? Kyunki jab hum satyug mein aayenge to complete pure honge na. To isko hum jaise ye charo yugon ko dekhe, lekin usse pehle माइंड को बिल्कुल ओपन करके, क्योंकि हो सकता है हम में से कईयों के लिए ये एक बहुत नई बात होगी, या ये कोई ऐसी बात हो रही होगी जो लग रहा होगा यू नो हाउ इज दिस रियली पॉसिबल। ऑल दैट वी नीड टू डू इज सिट साइलेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स राइट नाउ and just look at yourself on the journey. Because it's a journey. It's my story. And because it's my story, when I'm hearing it again, I will be able to reconnect to it. Kyunki ye main is yatra par guzri hu, to main jaise hi usko fir se sunungi, to mujhe connect ho jayega ki ye kaise hota hai. To apne aap ko us atma roop mein dekhe. Right? Kyunki ab hum sharir ki kahani nahi hai. Ye atma ki story hai. Aur hum mein se har atma us puri yatra se guzri hai. लेकिन मैं आत्मा उससे गुजरी हूँ, इसलिए सोल कॉन्शियसनेस पूरे ज्ञान की फाउंडेशन है. हर चीज सोल कॉन्शियसनेस से फिट हो जाती है. बॉडी सोचते हैं तो इट्स लिमिटेड टू दिस बर्थ, बट आई द सोल लॉट ऑफ बर्थ्स. पहले सबसे पहले मैं आत्मा कहाँ थी?
परम धाम
में. अपने आप को वहां देखिए. आई, दैट्स मी, दिस इज नॉट मी. तो मैं आत्मा, कंप्लीट प्योर. और मुझ आत्मा के अंदर मेरा सारा रोल
तय था,
रिकॉर्डेड है. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट बिकॉज इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड अ लिटिल प्रॉपरली, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. मुझ आत्मा के अंदर मेरा सारा रोल, मेरी सारी बेसिक स्क्रिप्ट. यस, ड्रामा है ना, हम सब एक्टर्स हैं. तो एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तो एक्टर को स्क्रिप्ट पहले से ही पता होगा. अब एक्टर उस स्क्रिप्ट को कैसे परफॉर्म करता है, वो उस एक्टर की चॉइस है.
ओके, वंडरफुल. ये जो सारे युग है, ये पार्ट्स हो सकते हैं ना ड्रामा के.
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एंड नाउ वी हैव कम टू द एंड पार्ट. राइट, इसीलिए इतनी थकावट और त्राही लगती है. लेकिन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स लेट्स नॉट लुक एट द एंड पार्ट, लेट्स लुक एट द बिगिनिंग.
ओके, है ना, दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल,
है ना, दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल. तो ड्रामा के लास्ट सीन को न देखकर ड्रामा के फर्स्ट सीन को देखने की कोशिश करें. और सबसे पहले अपने आप को बैक स्टेज देखें. जब आप घर पे थे, यू हैड स्टिल नॉट कम ऑन द स्टेज. तो मैं आत्मा, क्योंकि मैं आ रही हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं आत्मा उस परम धाम में, कम्प्लीट प्योर. हम सब आत्माएं उस परम धाम में थी, लेकिन क्योंकि परम धाम में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, जबकि हम एकदम स्टिलनेस में थे, शांति में थे, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं था. कर्म में नहीं आ सकते थे, कुछ अनुभव नहीं कर सकते थे, संबंधों में भी नहीं आ रहे थे, तो कोई खुशी भी नहीं अनुभव हो सकती थी, क्योंकि वी वर इन द स्टिलनेस स्टेज. सो द सोल वॉन्टेड टू कम डाउन टू प्ले, जैसे वो बच्चा जो वो घर में बैठा था, बोर हो गया घर में बैठ बैठ के, तो नीचे आया. जब मैं आत्मा सर्वप्रथम नीचे आती हूँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मुझे क्या मिलने वाला है. ये तो मुझे एक कॉस्ट्यूम की तरह मिला. मैं जब सबसे पहले अपने पिता को छोड़ के, अपने सब आत्मा भाइयों को छोड़ के, कुछ एक आत्माएं इस सृष्टि पर आती है, दे आर ब्यूटिफुल एट दैट टाइम, दे आर परफेक्ट, दे आर प्योर. वो सब आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं, आते ही उन्हें ये एक कॉस्ट्यूम मिलता है. उन्हें ये पता भी नहीं है कि ये क्या है. इट्स लाइक आई द मास्टर एंड मुझे ये एक मशीन की तरह मिल गया है यूज करने के लिए, जैसे एक रोबोट. लेकिन एक बड़ा यू नो डिग्निफाइड रोबोट है, वो इतना मैकेनिकल रोबोट नहीं है. लेकिन मैं कौन हूं? मैं बस ये एक स्टार हूं जो बैठी हूं और इस रोबोट के थ्रू काम करना शुरू करती हूँ. तो वो मैं कॉस्ट्यूम लेती हूँ, लेकिन जब मैं उस कॉस्ट्यूम के द्वारा कर्म करना शुरू करती हूँ, मुझे ये कंटिन्यूअस अवेयरनेस है कि मैं इसके थ्रू काम कर रही हूँ. इट्स लाइक अ टॉय दैट आई हैव गॉट टू प्ले ऑन दिस फील्ड. क्योंकि ये टॉय के बिना ना हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. उस टाइम सृष्टि कैसी थी?
परफेक्ट, एक्चुअली
सारे फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर आपके लिए एक ब्यूटिफुल स्टेज तैयार करके रखते हैं. वेदर इट्स फ्लावर्स, वेदर इट्स बर्ड्स, वेदर इट्स एनिमल्स, वेदर इट्स फ्रूट्स, 100% प्योर. वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको हम लॉजिकली तो अभी सोच भी नहीं सकते. तो वो दुनिया है, और जहां मैं आत्मा, कंप्लीट सत्व प्रधान, कंप्लीट प्योर. तो शरीर भी कैसा होगा?
वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक परफेक्ट.
परफेक्ट,
विदाउट
शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, कंप्लीट परफेक्ट शरीर. सोल कॉन्शियस 100%। खुशी सुख बाहर से नहीं मिलने वाला है,
मैं ही हूँ।
उल्टा मैं अपने थ्रू वो खुशी और सुख एक्सप्रेस करती हूँ। मुझे मैटर से, जड़ चीजों से, यू नो, जो सेंसुअल प्लेजर है वो नहीं चाहिए, मेरे थ्रू वो एक्सप्रेस होता है। रिलेशनशिप्स कैसे होंगे?
बहुत सुंदर
होंगे। एवरीथिंग विल बी बाय इट्स नेचुरल लॉ। आपको पुलिस, कोर्ट ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता उस दुनिया के अंदर। कोई बीमार नहीं होगा तो कोई डॉक्टर नहीं होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी लेकिन इट विल बी परफेक्ट। वो ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी, जिससे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, दुख का नामो निशान नहीं है, नॉट इवन अ ट्रेस। मतलब जिसको हम कहेंगे दुख क्या होता है, द सोल वुडंट नो, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि वो 100% परफेक्ट है। मृत्यु का भी कोई भय नहीं, कोई डर नहीं और कोई दुख नहीं। ये दुनिया जो सत्युग की दुनिया होगी, यहाँ कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो एक राजा होगा, एक भाषा होगी, एक धर्म होगा, और वो धर्म होगा सत्यता का धर्म। कुछ असत्य नहीं हो सकता। भाषा कैसी होगी? स्नेह की भाषा। कोई ड्यूअलिटी नहीं होगी किसी भी चीज में, सब कुछ एक। एक राज्य, एक धर्म, एक मत। जो आत्माएं होंगी इनको हम डिवाइन सोल्स या दिव्य आत्मा कहते हैं, जिनके लिए हम आज दिन तक महिमा करते आए कि 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, वो आत्माएं होंगी। अब पहला शरीर लिया, कर्म करना शुरू किया, इम्प्रेशन पढ़ना शुरू हो गया। 150 वर्ष पूरे हुए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, समय बीत रहा है, लेकिन अभी भी, क्योंकि बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है, हम सत्युग से निकलते निकलते त्रेता युग में आ जाते हैं। त्रेता युग भी सत्युग की तरह ही है, बहुत ही सुंदर दुनिया, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एकदम नया मकान और फिर थोड़ा सा पुराना मकान, उतनी ही प्योरिटी, उतनी ही पीस, उतनी ही हैप्पीनेस, लेकिन थोड़ी सी जैसे डलनेस आ जाती है। इसीलिए जहां सत्युग में हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, त्रेता युग में हम कहते हैं 14 कला संपूर्ण, कि थोड़ी सी कला कम हो जाती है, बाकी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा,
थोड़ा सा डलनेस
डलनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आत्माएं कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है, साथ साथ
नई आत्माएं भी आ रही है,
और आत्माएं भी आ रही है, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो त्रेता युग में पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सत्युग में भी बढ़ता जाता है, लेकिन फिर त्रेता युग में और बढ़ता जाता है। तो क्या होगा? रिसोर्सेस तो उतने ही है, लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसीलिए थोड़ा सा फर्क उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी भी हम सोल कॉन्शियस है, अभी भी हम सोल कॉन्शियस है, और जब तक हम त्रेता युग के एंड तक पहुंचते हैं, जिसको हम कहेंगे ड्रामा का हाफ ड्रामा, ये पूरा हो जाता है। जो आपने टाइम पीरियड की बात की, तो सत्युग, क्योंकि निराकार परमात्मा हमें ये सारी नॉलेज देते हैं, तो वो हमें एक्यूरेट सारा पीरियड भी बता देते हैं कि सत्युग की ड्यूरेशन 1250 वर्ष। ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑफकोर्स देर इज नो यू नो फिक्स्ड थी कि अभी ये वेरिएशन शुरू हो गया, बट अप्रोक्सीमेटली 1250 वर्ष, त्रेता युग की भी 1250 वर्ष। तो सत्युग एंड त्रेता युग दोनों मिला के 2500 वर्ष हम इस स्टेज पर खेल रहे हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं,
और सोल वही चलती जा रही है और साथ साथ और भी
आती जा रही है,
क्योंकि वो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, और सब आत्माएं जो स्टेज पर है वो तो ज्वाइन करती जाएंगी ना,
एंड नोबडी गोज बैक।
तो इसलिए इफेक्टिवली पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब सत्युग और त्रेता युग में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, तो परमात्मा को याद नहीं करते, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुख ही नहीं था, तो परमात्मा को याद नहीं करते तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं, कोई धर्म नहीं, बस सत्यता का धर्म, यू नो, एंड एवरीबडी लिविंग लाइक इन यूनिटी. अब धीरे धीरे, क्योंकि आत्मा ने कितने सारे शरीर अभी तक ऑलरेडी बदल दिए, ये जो 2500 वर्ष का पीरियड है इसको हम कहते हैं पैराडाइज,
स्वर्ग,
स्वर्ग,
हेवन,
हेवन, गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है वो जिसको आज दिन तक हम याद करते आए, वेयर एवरीथिंग वाज परफेक्ट. ये वो दुनिया है जिसको हम कहते हैं देव आत्माओं की दुनिया, डिवाइन सोल्स, वो देवी देवताएं जिनको हम आज दिन तक भी याद करते हैं. जहां तक पॉपुलेशन पहुंचती है बाय द एंड ऑफ त्रेता युग, तो पॉपुलेशन रीचेस 33 करोड़, और इसीलिए आज दिन तक गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं. क्यों, कौन है वो 33 करोड़ देवी देवताएं? दी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि देवर ऑल डेटीज, देवर ऑल डिवाइन सोल्स, एंड द पॉपुलेशन वॉज 33 करोड़. सो 33 करोड़ डिवाइन सोल्स, द एंड ऑफ त्रेता युग,
हु लिव्ड इन विद अवेयरनेस दैट
हु दे आर, देवर कॉन्शियस एब्सोल्यूटली दैट दिस इज हु आई एम, आई एम यूजिंग दिस बॉडी, तो नो कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल वो जैसे क्लैरिटी थी. लेकिन बहुत सारे बर्ड्स लेते आए हैं ना, अब धीरे धीरे इस बॉडी के साथ अटैचमेंट बढ़ता जाता है. जैसे कोई चीज अगर बहुत समय तक पहने रखो तो थोड़े टाइम के बाद, जैसे रिंग पहनी है, शुरू शुरू में पहनी है तो अवेयरनेस है कि ये मैं हूँ, ये मैंने पहनी है, थोड़े टाइम के बाद ऐसे लगता है कि वो तो एक
बॉडी
हिस्सा ही है. तो इसी तरह मुझे आत्मा ने जब इतने सारे शरीर लिए छोड़े, और आत्मा की प्योरिटी भी तो जो हमने कहा एंट्रोपी, इट इज मूविंग फ्रॉम दैट हाईएस्ट स्टेट, क्योंकि इट वाज एट इट्स हाईएस्ट स्टेट, लेकिन मूवमेंट में आने के कारण यूज होने के
थोड़ी
थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी यूज होते गए. अब जब तक ये वाला पीरियड आया कि हम त्रेता युग के एंड पर पहुंचे, द्वापर युग के शुरू का पीरियड वो पीरियड है जो हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो गए. बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम आने लगे तो हम दूसरे के भी शरीर को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि खुद को नहीं याद कि मैं कौन हूं, तो आपको भी किस रूप में देखेंगे, शरीर के रूप में देखेंगे. अट्रैक्शंस किस तरफ बढ़ने लगे, फिजिकल, यू नो, क्योंकि वो इंटरनल पीस क्या थी, इंटरनल प्योरिटी क्या थी, अब पता नहीं है. तो अब मेरा ध्यान बाहर की तरफ जाने लगा. पहले ये हो रहा था कि मेरी क्वालिटी का प्रभाव मैटर पर पड़ता था, अब होने लगा कि मैटर का प्रभाव धीरे धीरे मुझ पर पड़ने लग गया. और जब अब वो स्टेज आई कि मुझे खुशी
बाहर से मिलने लगी,
सुख बाहर से मिलने लगा, लोगों से चाहिए, कोई वस्तु से चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ये भूल गया कि मैं आत्मा हूँ. सो द्वापर युग इज द स्टेज कि हम सोल कॉन्शियसनेस से बिगिनिंग ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए कि मैं शरीर हूँ और शरीर ही सब कुछ करती है. तो धीरे धीरे जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज,
ईगो की जो बात हमने की,
और जहाँ ईगो आएगी वहाँ
सारी जो चीजें शुरू होनी शुरू,
सारे वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम से सारा आ जाता है, इट कम्स वेरी स्लोली. जैसे हम लोग एक बार बात कर रहे थे कि अगर हम प्योर थे तो फिर हम ऐसे क्यों हो गए, जब हमें पता है कि हम अपना बेस्ट पार्ट इस ड्रामा में प्ले करने वाले हैं तो हम गलतियां क्यों करते हैं. इट स्टार्ट्स लिटिल बाय लिटिल ना. फर्स्ट टाइम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे जो मैं आत्मा इस मशीन के थ्रू काम कर रही थी, धीरे धीरे मैं अंदर सो गई और इस मशीन ने मेरे ऊपर टेक ओवर कर लिया, मैं अंदर सोई पड़ी हूँ. अब ये मशीन अपने आप ही ऑटोमेटिक, यू नो,
और इसमें आनंद आने लग गया ना एक्चुअली.
तो मुझे अब अवेयरनेस ही नहीं है ना, आई एम स्लीपिंग इनसाइड एंड दिस हैज टेकन ओवर मी. अब धीरे धीरे आई स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू द फिजिकल फॉर्म. Those thoughts will start coming to me. मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ. This must have been one thought which must have come to somebody. First arrogance, अहंकार. अभी तक हम सब इक्वल थे,
क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट
कॉन्शियस में, सोल कॉन्शियसनेस में इक्वल थे. लेकिन जैसे ही कॉस्ट्यूम को देखना शुरू किया, जैसे अब हम साड़ी को देखें, तो आप कह सकते हैं माय साड़ी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, क्योंकि इक्वल नहीं है आपकी डिफरेंट मेरी डिफरेंट. तो इसी तरह फिजिकल फॉर्म को देखा, फर्स्ट थॉट मस्ट हैव कम टू वन सोल. यू नो सो सटल है वो, कैसे शुरू होता है. फर्स्ट थॉट, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू. सेकेंड थॉट, आई कैन बिकम बेटर देन यू. कॉम्पिटिशन, jealousy,
I should have what you have.
अब उसके बाद if you don't give it to me,
I will take it.
तो ये कहीं ना कहीं एक first thought जो शुरू हुई होगी. अभी तक जो stack था अंदर, अकर्म किया था, neutral कर्म किए थे. आत्मा के संस्कार कैसे थे? Purity, peace, bliss, happiness. कहीं से एक thought create हुआ कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये क्यों नहीं मिला, वट एवर. इंटेलेक्ट के पास दो थॉट आए होंगे, मैं हूं ही आनंद स्वरूप, नहीं मुझे आनंद इनसे चाहिए. एंड फर्स्ट टाइम अगर इंटेलेक्ट ने वो डिसीजन ले दिया,
वो एक्शन हुआ,
एक्शन,
देन फिर वो
इंप्रेशन का इंप्रेशन बना. पहला इंप्रेशन बना होगा क्रोध का, या ईर्ष्या का, या अहं, ये पहले इम्प्रेशंस बनने शुरू हुए होंगे. और यहाँ से हम कहेंगे कि हम विकर्म करना शुरू कर देते हैं.
तो द्वापर युग से हमारा असली में देखा जाए अगर, तो कार्मिक जो लॉ था, वो यू नो वो शुरू
लागू. इसीलिए विकर्म वहीं से शुरू होता है. सत्ययुग और त्रेता युग में अकर्म, अकर्म मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल एक्शन. और वो न्यूट्रल एक्शन की वजह से उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही न्यूट्रल एक्शन. लेकिन द्वापर युग, देखो द्वापुर मतलब जहां से दो पुर शुरू हो जाते हैं, ड्यूअलिटी शुरू हो जाते हैं,
ये डिसीजन लेने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसीजन.
दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है अंदर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां से अंदर आएगा सही क्या है, गलत क्या,
विच वे
टू
गुड.
अब धीरे धीरे कुछ सोल्स ने कहा होगा नहीं ये सही है, कुछ सोचने का होगा नहीं एक बार तो ये करके देख ले. और धीरे धीरे वो गलत समाज में आना शुरू हो गया. और फिर वो एक बार आ जाता है तो यू नो द वे इट स्प्रेड्स. लेकिन ड्यूअलिटी यहाँ से शुरू हो जाएगी. सेंसुअल प्लेजर कि हमें बाहर से चाहिए, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा. अभी तक नथिंग.
इंद्रिय सुख की जो बात,
इंद्रिय सुख, अभी तक अति इंद्रिय सुख था कि इंद्रियों का सुख नहीं था, अभी इंद्रियों से सुख मिलना शुरू हो जाएगा. जहां ये ड्यूअलिटी आ गई सही और गलत, तो वहां विकर्म शुरू हो गया. और जहां ये कर्म करना हमने शुरू किया, तो इसका इम्प्रेशन बनना शुरू हुआ. भोगना, जो एनर्जी आप बाहर भेजेंगे वही एनर्जी वापस आपको मिलेगी. तो यहां से दैट ट्रेस ऑफ दुख, अशांति, वो धीरे धीरे, बहुत कम लेकिन धीरे धीरे ये शुरू हो जाती
क्योंकि
है.
अभी हमारी बैटरी बिल्कुल चार्ज थी,
अभी तक बिल्कुल काफी चार्ज थी. जैसे 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, लेकिन अब थोड़ी सी अटैचमेंट सारा. इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे जो गिरावट थी वो कहाँ शुरू हुई, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आ गए.
तो तभी कहा जाता है कि अटैचमेंट जो है वो सबसे यू नो डिटैच होके ही जिंदगी जी जाए तो बेहतर है.
जो आपने उस टाइम भी कहा ना कि ये जो आज दिन तक हम शास्त्रों में सुनते आए कि एडम एंड ईव दे एट द फॉरबिडन एप्पल, तो वो कोई स्थूल एप्पल नहीं था जिसको खाना मना था, और उसको खाने से आप उस तरह से गिरावट में आ जाते. लेकिन वो ये अटैचमेंट,
इट्स
द थॉट, एंड उनको जो मना किया गया था उन्होंने वो ही करना शुरू कर दिया. तो परमात्मा ने भी जब हमें सृष्टि पर आए तो वी वर वेरी प्योर, हमने इस कॉस्ट्यूम को ठीक से यूज करना शुरू किया. लेकिन धीरे 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 हम खुद को भूलने लग गए. स्लीपिंग स्टार्टेड, जो अभी हम अवेकनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो द्वापर युग के शुरू से सोना हमने शुरू किया. खुद को भी भूल गए थे, उसको भी भूल गए थे. तो कहीं ना कहीं वो गलत डिसीशन, इंटेलेक्ट कमजोर होने शुरू हो गई, सही और गलत के बीच में वो पहचान नहीं करी. और जहां दुख होने शुरू हुए वहां हमने उसको फिर याद करना शुरू किया. क्योंकि सत्ययुग त्रेता युग में परमात्मा की जरूरत नहीं है. यू नो, जैसे कहा जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे, तो उसमें जरूरत ही नहीं थी.
उसमें तो हम उसकी अवेयरनेस में, अपनी अवेयरनेस में ही जी रहे हैं.
इट्स सेम थिंग लाइक बच्चा जब नीचे खेलता है तो वो अपनी मम्मी को नहीं याद करता, प्रॉब्लम में आता है तब वो अपनी मम्मी को याद करता है. तो हम भी पहले बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे उस पैराडाइज वाले पीरियड में, लेकिन जैसे ही वो दुख होना शुरू हुआ तो आत्मा के अंदर रिमेम्बरेंस था कि मुझे सब दुखों से किसने मुक्त किया था, वो सुख के सागर ने. मेरा पिता कौन है जो इस टाइम मुझे इस नेगेटिविटी से लिबरेट कर सकता है, वो निराकार परमात्मा है. तो ऑटोमेटिकली बुद्धि उस पिता की तरफ, शिव बाबा की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें याद था ना, हम आए थे, लेकिन टाइम कितना पास हो गया बीच में,
2500 साल,
छोटे तो नहीं,
500.
आज 2 साल भी अगर बीत जाए तो हमें बहुत सारी बातें भूल जाती है, लेकिन अ ट्रेस, अ रिमेम्बरेंस रह गया. तो कहीं ना कहीं आत्मा को थोड़ा सा याद था, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि मेरा पिता कौन है. लेकिन कहीं ना कहीं उस दुख में मैंने अपने पिता को याद करना शुरू कर दिया, और वहां से फिर रिलीजन स्टार्ट हो जाता है. अभी तक एक रिलीजन, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, कोई डिवालिटी नहीं.
ये कमजोर होता मानव द्वापर युग में, फिर धर्म की स्थापना हुई. कैसे ये सफर आगे बढ़ा, क्योंकि
आधी जर्नी हमने अपनी देखी.
2500 साल हमने इस पूरे साइकिल के साथ जिए. अभी आगे 2500 साल क्या कुछ और अनफोल्ड होगा इस ड्रामा में, इसके बारे में बात करेंगे. आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
ओम शांति.
ओम शांति. समय का चक्र, काल चक्र किस तरह से हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है. जब हमने पूरी श्रृंखला शुरू की थी तब भी हमने कहा था कि हो सकता है कई बार मन में डाउट्स आए, कई बार ये लगे कि क्या ये सही है, क्या ये हो सकता है, और तब हम उसे तर्क का जो बैलेंस है, तर्क की कसौटी पर खंगालेंगे, और फिर अगर हमें लगेगा कि हाँ ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये मैं अनुभव कर पा रही हूँ, तब हम आगे बढ़ते जाएंगे. अभी तक हम सोल कॉन्शियसनेस पर गए, हमने परमात्मा की पहचान की, उन सभी को अनुभव करते हुए आज जब हम समय की बात कर रहे हैं, समय चक्र का पूरा एहसास जान पर रहे हैं, और किस तरह से ये अनफोल्ड होती गई, किस तरह से सतयुग और फिर त्रेतायुग और द्वापर युग तक हम पहुंचे हैं, आगे अभी कहानी बाकी है, बहुत कुछ अभी हमें जानना है. तर्क की कसौटी पर फिर इसे खंगालेंगे.